हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें हम हमेशा टेलीविजन में भी देखते हैं और जिनके द्वारा जो बाबा की मुरली होती है तैयार होकर हम तक पहुंचती है वो हमारे बीच हैं। परमादरणीय राजू भाई जी, एक हाथ की ताली से हम आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के सुंदर भट्टी में पहली क्लास भ्राता जी ही ले रहे हैं हम सबकी। स्मृति सो समर्थे, ये विषय है। हम जानते हैं कितना महत्वपूर्ण विषय है हम सबके लिए। स्मृति स्वरूप होना ही हम सबको नष्टो मोहा बनाएगा। स्मृति ही हमारी स्थिति, हमारी समर्थि का आधार है। तो प्यारे बाबा के जो गहन महावाक्य हैं और आपके जीवन के जो सुंदर अनुभव हैं दादियों के साथ, आपकी तपस्या के, वो आज हम सबके साथ साझा करने जा रहे हैं। आदरणीय भ्राता जी, बाल्यकाल से ही बाबा के घर से जुड़े हुए हैं। 1972 में मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे, अपने पिछले जन्म में बुजुर्ग थे। तो 1972 से भ्राता जी मधुबन में समर्पित हैं बाबा के घर में। आपने सिंधी लैंग्वेज सीखी ताकि जो सिंधी मुरली होती है उसे टाइप कर सकें, दादियों के लिए तैयार कर सकें, और सिंधी मुरली को भी आप हिंदी में टाइप करके हम तक पहुंचाते हैं। प्रारंभ से ही बाबा ने आपको ये सेवा दी है। प्यारे बाबा जब आते हैं हॉल में तब भी पैरेलल साथ साथ भाई साहब टाइपिंग करते हैं ताकि तुरंत ही बाबा ने जो कहा है वो विश्व के कोने कोने तक पहुंच सके। आपने कई किताबें भी लिखी हैं जिनका अध्ययन आपने किया होगा, ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, जिनमें ज्ञान की बहुत गुह्यतम बातें हैं। आपने अवश्य अध्ययन किया होगा, न किया हो तो जरूर उन्हें पढ़ें। आप रूरल डेवलपमेंट विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं और फोटोकॉपी डिपार्टमेंट आप जो देखते हैं तीनों ही कैंपस में भ्राता जी की देखरेख में उसकी सेवाएं होती हैं। दादी जी की तरफ से पत्र पुष्प आप सब तक आता है प्रति मास, तो भ्राता जी ही निमित्त बन करके दादी जी की ओर से वो पत्र, अव्यक्त इशारे और पुरुषार्थ की सुंदर प्रेरणाएं हम तक प्रेषित करते हैं। वर्तमान समय पीस ऑफ माइंड टीवी में आपने देखा होगा अनमोल रतन, एक बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम आता है जिसमें बाबा के महावाक्यों की जो सुंदर व्याख्या है भ्राता जी के मुखारविंद से हम सुनते हैं। देश और विदेश की यात्रा करते हुए आपने शिव ध्वज को हर स्थान पर फहराया है। तो ऐसे अति आदरणीय सम्माननीय हम सबके बहुत ही प्यारे आदरणीय राजू भाई जी से अब हम सब सुनेंगे स्मृति सो समर्थी विषय।
आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। दास्तां गए, मन के फूल खिल गए, अश्क मेरे इन नयन के मोतियों में ढल गए। आसमां पे है लिखी प्रीत ये पुरानी, आपने सवार दी मेरी जिंदगानी।
ओम शांति। ज्ञान सरोवर में तपस्या करने का आप सभी ने गोल्डन चांस लिया। बहुत दिनों के बाद ज्ञान सरोवर में आप सबका आगमन हुआ है और मैं समझता हूं बाहर अपने बीके भाई बहनों की पहली भट्टी ज्ञान सरोवर में हो रही है। भट्टियां होती हैं पांडव भवन में, लेकिन इस बार ज्ञान सरोवर ने पहला नंबर लिया है। पांडव भवन में अभी शुरू नहीं है। ये भी बाबा का तपस्या स्थान बहुत आकर्षक है। भले ठंडी है, गुजरात वालों को तो थोड़ा ज्यादा लगती होगी, लेकिन सुबह शाम की ठंडी है, बाकी तो योग ही करना है। जब से हम सब बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हमें अनेक प्रकार की स्मृतियां दिलाई और स्मृति विस्मृति का ही पूरा खेल बना हुआ है। जब हम सब स्मृति स्वरूप थे, अपने स्व की स्मृति में रहे, तो भारत देवभूमि कहलाई। और जब स्व की स्मृति से हम विस्मृति में आ गए, तो वही देवभूमि अनेक विकारों के कारण आश्रय भूमि बन गई। संगम युग पर जब बाबा आते हैं, तो हम बच्चों को पहले यही स्मृति दिलाते, पहला पाठ ही पढ़ाते हैं, आप कौन हैं, मैं कौन हूं, ये पहेली हम सब ने हल कर ली है। और जब ये पहेली हल कर ली, तो देह भान से जो अनेक प्रकार की बुराइयां आई, कर्मेंद्रियों की अधीनता हो गई, अनेक विकर्म बने, इस स्मृति से वो समर्थी आ गई जो हम अपनी कर्म इंद्रियों के शासक बने। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं कह सकती है कि मुझे मेरी कर्म इंद्रियां धोखा देती हैं। ये स्थूल कर्म इंद्रियां हैं या आत्मा की चैतन्य शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। जब ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा मालिक हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, तो इस स्मृति के आते ही मन बुद्धि और संस्कार इन पर हमारा कंट्रोल हो जाता है। साकार बाबा तो मुरली में कुछ बच्चों की तरफदारी करते रहे हैं और आज की मुरली में भी की कि बच्चे अगर मनसा में कोई तूफान आते हैं तो हर्जा नहीं है, कर्म इंद्रियों से नहीं करना। ये भी बाबा ने कहा, बच्चे मैं आगे हूं, इंजन हूं, जो आपके आगे आते हैं, आपके सामने पेपर आते हैं, वो मेरे सामने पहले आते हैं। जब मैं क्रॉस करूं, मैं अनुभव करूं, तब तो आप बच्चों को समझाऊं। बाबा अपने बच्चों को आथत देने के लिए ये जल्दी जल्दी डिस्टर्ब ना हो, भारी ना हो जाएं, इसलिए ऐसी कई युक्तियों से बच्चों को चलाते रहे। लेकिन अव्यक्त रूप में बाबा ने मनसा पर बहुत ध्यान खिंचवाया। मन में भी अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प आते हैं तो पहला बीज मन है, संकल्प है। बीज ही अगर गलत है तो बोल और कर्म तो होंगे ही गलत। इसलिए बीज को सुधारा। बाबा ने हमेशा कई मुरलियां ऐसी चलाई कि अपने संकल्पों पर ध्यान दो, संकल्पों की क्वालिटी को अच्छे से अच्छा बनाओ। जिसके संकल्प शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं, उसे विकल्प आ ही नहीं सकते। और उसके लिए बाबा ने हम सबको ज्ञान की अच्छी पढ़ाई पढ़ाई, ज्ञान रतन दिए, ज्ञान चिंतन करना सिखाया। ज्ञान स्वरूप आत्मा जब बनती है तो ज्ञान स्वरूप आत्मा सहज योगी बन जाती, और सहज योगी बनने से वो मालिक बन करके कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखती है। तो हम सब पहले अपने निज स्वरूप को पहचान कर अपने स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं। इसी की प्रैक्टिस है और यही आदि और अंत का पाठ है। आदि में हम सबको बाबा ने विधि बताई, अपने को आत्मा समझो, इस देह से न्यारे होकर के देह और देह के संबंधों पर मालिक बनकर के अधिकार से चलो तो इसकी सिद्धि अंत समय में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। पढ़ते पढ़ते इस पाठ को पक्का करते करते वो स्थिति हमारी आ जाएगी जो सब तरफ से हमारा मोह खत्म हो जाएगा। ये पहली स्मृति, और साथ साथ बाबा ने हम सबको नया जन्म दिया। मरजीवा जन्म की स्मृति अगर रहती है कि ये हमारा अलौकिक जन्म है, दिव्य जन्म है, ब्राह्मण जन्म है, तो जो पास्ट जन्म के संस्कार, जिसको हम कहते हैं शूद्रपन के संस्कार, वो समाप्त हो जाते हैं। अगर नया जन्म लेने के बाद, जैसे आप देखो कोई बच्चा जब जन्म लेता है अगर उसको पास्ट की स्मृतियां रहती हैं तो शांति से न खुद रह सकता है न परिवार को रहने देता है। बार बार दूसरे माता पिता जो पिछले जन्म के उसको याद आते हैं, परिवार याद आते हैं, घर याद आता है। पास्ट की स्मृतियां अगर भूले नहीं तो बहुत दुख की महसूसता, परेशानी की महसूसता होती है। हम सबको बाबा ने नया जन्म दिया, अलौकिक जन्म दिया, मरजीवा बनाया। इसलिए बाबा कई बार अपने बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे ये जो शूद्रपन के संस्कार, ये तुम्हारे पास्ट जीवन के संस्कार हैं, ये जन्म पवित्र जन्म, ब्राह्मण जन्म, मुख वंशावली जन्म है, इसमें आपके अंदर वो विकारी संस्कार, वो संकल्प इमर्ज नहीं होने चाहिए। अगर वो स्मृति रहती है कि मेरा ये नया जन्म द्विज जन्म है तो वो समर्थी आ जाती है जो हम अपने पास्ट को पास्ट कर सकते हैं। कई आत्माएं ब्राह्मण बनने के बाद बीती को बिंदी नहीं लगा पाती, बीती बातें बार बार उनको परेशान करती हैं। और बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे जब तुम बाबा के बच्चे बन गए तो बीती को याद नहीं करो, बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप। नए जन्म की स्मृति रहे कि ये हमारा ब्राह्मण जन्म है और ब्राह्मण जन्म में हम गृहस्थी नहीं हैं। भले कोई ने अपना गृहस्थ व्यवहार बनाया है लौकिक में, लेकिन जब अलौकिक जन्म हो गया तो ये स्मृति रहे कि ये मेरी रचना नहीं है, ये सेवा के लिए रचना हमारे साथी है। अब ये स्मृति का परिवर्तन, जब तक इस स्मृति का परिवर्तन नहीं किया तब तक बंधन है, तब तक कोई न कोई विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए बाबा हम सबको स्मृति दिलाते हैं, आप गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो। ट्रस्टीपन की भावना बहुत ईमानदार बनाती है। हम सबने बाबा को यही वायदा किया कि बाबा ये तन, ये मन, ये धन, ये सब कुछ जो कुछ आपने मुझे दिया, ये सब आपका है, मैं आपका हूं और ये सब आपका है, समर्पित कर दिया। और समर्पित करने के बाद बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम्हें इसको रिटर्न में अमानत के रूप में देता हूं। जो कुछ हमारे पास है, हमने तो बाबा को अर्पित किया और बाबा ने हमें रिटर्न करके कहा, ये अमानत समझ करके संभालो। क्या अपनी प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते, धंधा धोरी करते, ये स्मृति रहती है, ये प्रभु की अमानत है। परिवार है वो भी उसकी अमानत है, धन संपत्ति है वो भी उसकी अमानत है, और ये शरीर भी उसकी अमानत है। अमानत को संभाला जाता है, ईमानदारी से संभाला जाता है, कोई छोड़ न ले जाए, कहीं नष्ट न हो जाए, लेकिन उस पर अपना अधिकार नहीं रखा जाता, उसको हम गलत तरीके से प्रयोग में नहीं ला सकते। अगर ये स्मृति रहती है कि ये सब प्रभु की अमानत हमें मिली है, तो वो समर्थी आ जाती है कि इसको हम व्यर्थ नहीं कर सकते। अगर कहीं जा रही है तो उसको हम बचाते हैं, और बचाते ही नहीं है लेकिन हम उसके इतने वफादार हैं जो उस अमानत को बढ़ाते हैं। जैसे कोई बच्चे इतने अच्छे होते हैं, सपूत आज्ञाकारी, तो माँ बाप की प्रॉपर्टी को वो बढ़ाते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं, उस प्रॉपर्टी को खत्म नहीं कर देते, उड़ा नहीं देते कि माँ बाप की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जो मेरे ट्रस्टी बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी स्मृति में परिवर्तन कर दिया कि हम तो उस जन्म से मर गए, हमारा ये मरजीवा जन्म है, हम गृहस्थी नहीं हैं, हम प्रवृत्ति वाले नहीं हैं, हम ट्रस्टी हैं और हमारी परवृत्ति है। परवृत्ति समझ रहे हैं, परवृत्ति, वृत्ति से परे, अपनी प्रवृत्ति को हम अपनी वृत्ति के अंदर नहीं लेते कि मेरी है, बाबा की है, बाबा ने मुझे दिया है, सेवा के साथी हैं, हमें संभालना है, इनकी सेवा करनी है, इनको साथ देना है, सहयोग देना है, लेकिन मोह ममता नहीं रखनी है। दुख का कारण तो मोह है, स्नेह के लिए तो बाबा ने मना नहीं किया है। स्नेह है, संभालो, सहयोग दो, मदद करो एक दूसरे को, लेकिन मोह के कारण कुछ हो गया नीचे ऊपर, तो उसके पीछे परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो। उसका पार्ट, उसका हिसाब किताब जो आपके साथ था वो पूरा हो गया, इसलिए मुझे उसमें परेशान नहीं होना है। नष्ट मोह बनने की बड़ी अच्छी विधि है। बाबा ने अनेकानेक स्मृतियां दिलाई। अपने 500 रूपों की स्मृति ही है जो बाबा ने कहा है ड्रिल करो, मैं समझता हूं आप सब करते भी होंगे, और इस लॉकडाउन के अंदर बहुत अच्छा समय सबको मिला। चारों तरफ से जहां जहां भी मैं क्लासेज कराई, जहां से भी मैंने बात की, ऐसे लगते थे जैसे ब्राह्मणों को एक कोई गोल्डन लॉटरी मिली है, अपने पुरुषार्थ के लिए समय मिला। वैसे तो बहुत बिजी रहते हैं, बाहर की सेवाएं, ये सेवाएं, वो सेवाएं, लेकिन सबको बाबा ने फ्री करके अपनी सेवा करो, अपनी स्वस्थिति बनाओ, अपने स्थान पर रह करके तपस्या करो। और मैं समझता हूं बहुत से बाबा के बच्चों ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, और उसमें यही 5 स्मृतियां जो बाबा दिला रहे थे लास्ट मुरली पिछले सीजन में जो रिवाइज हुई थी, उसमें बाबा ने कहा था, बच्चे कम से कम 24 बार, पहले 8 बार कहा, 12 बार कहा, फिर कहा 24 बार, ये ड्रिल करना, ये स्मृतियां जो दिलाई हैं इसकी ड्रिल करना। तो पहली स्मृति बाबा ने दिलाई कि आपका अनादि स्वरूप क्या है। जब इस स्मृति में हम स्थित रहते हैं कि मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप जो परम धाम वाला स्वरूप है, निज स्वरूप है, जिसके अंदर कोई कर्म बंधन नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, किसी के साथ कोई बंधन नहीं, वो जन्म, वो आत्मा का निज स्वरूप, परमधाम वाला अपना असली स्वरूप, उसकी स्मृति में रहो। कितना पवित्र है, कितना निर्बंधन, स्वतंत्र, बाबा के समान स्वरूप है वो। अनादि स्वरूप में जब आत्मा स्थित होती है तो सब संबंध, सब बंधन उसके अपने आप खत्म हो जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, मेरा वो स्वरूप असली है। फिर दूसरे स्वरूप में हम अपने आदि स्वरूप में आए, देव स्वरूप में आए, तो देवताएं भी जीवन में रहते हुए भी मुक्त हैं, उनको कहते हैं जीवन मुक्त स्टेज। न कोई बंधन है, न कोई विकार है, न कोई विकर्म हो रहे हैं, क्योंकि संगम युग की प्रालब्ध भोग रहे हैं आत्माएं। जो इस समय पुरुषार्थ किया है उस पुरुषार्थ का फल प्राप्त हो रहा है द्वापर और कलयुग के अंदर, द्वापर कलयुग ने सत्युग और त्रेता के अंदर, जो आदि काल है उस देव स्वरूप को अपनी स्मृति में ला करके हम अपने उस पवित्र स्वरूप में स्थित होते हैं, देव स्वरूप में स्थित होकर। अब देव स्वरूप से जब आत्मा नीचे आई तभी भी बाबा ने ये नहीं कहा कि आपकी गिरती कला हुई, लेकिन अपना वो स्वरूप याद रखो जो आपकी हर स्थान पर पूजा हो रही है, पूज्य स्वरूप। मंदिरों में मूर्तियों से हर एक आत्मा की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। उस स्वरूप में स्थित अगर हम होते हैं, पूज्य स्वरूप में, तो कितनी लंबी लाइन भक्तों की हमारे जड़ मंदिरों के आगे, मूर्तियों के आगे रहती है, और उनकी जिस प्रकार की कामनाएं होती हैं वो मूर्ति के सामने जाते ही पूरी होती हैं। इतना आत्मा इस संगम के समय पर भरपूर होकर के जाती है, जो सत्युग और त्रेता के अंदर उसकी प्रालब्ध भोगती है, और द्वापर युग प्रारंभ होते ही, भक्ति काल शुरू होते ही, वो पूज्य पद के आधार से जो उसकी पूजा होती है उसके द्वारा अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं समझता हूं हम जब कभी मंदिर में जाते हैं तो ये स्मृति आती होगी कि ये किसकी पूजा हो रही है, आती है ना? नहीं, शिव बाबा के मंदिर में जाते हैं तो यही सोचते हैं हमारे बाबा की पूजा हो रही है। कितनी श्रद्धा से, कितनी भावना से लोग उनके सामने जाकर के क्या क्या डिमांड करते हैं भगवान के आगे, हमारा बाप है और वो सबकी मनोकामनाएं पूरी कर रहा है। फिर देवी देवताओं के मंदिरों में जाओ तो ऐसे लगता है कि देखो इनके दर्शन से कितनी आत्माएं प्रसन्न हो रही हैं, ये हमारे ही यादगार बने हुए हैं, जगह जगह पर इतने मंदिर बने हैं, कितनी लोगों की श्रद्धा है, कितनी भावनाएं हैं, एक सेकेंड, एक मिनट का दर्शन, और उस दर्शन से आत्माएं प्रसन्न हो जाती। क्या बाबा ने संगम पर हम सबको बनाया है, तो वो पूज्य स्वरूप स्मृति में आता है। अनादि स्वरूप, देव स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप स्मृति में लाते हैं तो समर्थी आती है कि संगम पर किस स्टेज को हमने प्राप्त किया है जो सारा कल्प हमारी इस तरह से यादगार बनी है। और फिर संगम पर आते हैं तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो डायरेक्ट भगवान हम बच्चों को ढूंढ करके निकाल लेता है। मैं कई बार सबसे पूछता हूं, आपने बाबा को ढूंढा है या बाबा ने आपको ढूंढा है? आपने नहीं ढूंढा? नहीं, आपने भी ढूंढा है। हम लोगों ने ढूंढा लेकिन बिना एड्रेस के ढूंढा। ढूंढा तो जरूर, मंदिरों में गए, गुरुओं के पास, तीर्थों पर, कितने जगह पर गए, लेकिन एड्रेस ठीक नहीं थी इसलिए वो मिला नहीं। वो जब आया तो उसने ढूंढ करके अपना बच्चा बना लिया, उसने अपनी पहचान दे दी, और पहचान ही नहीं दी लेकिन अपने साथ संबंध जुड़ा लिया, संबंध जुट गया। अभी हम कोई हे ईश्वर, हे प्रभु ऐसे कह करके तो याद नहीं करते हैं, बड़े दिल से कहते हैं मेरा बाबा। कितनी भावना से, कितनी श्रद्धा से, हरेक के दिल में बाबा जैसे बसा हुआ रहता है, याद रहती है। तो संगम पर बाबा मिला, इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला, इतनी ऊंची प्राप्तियां हुई, कभी इसकी स्मृति रहती है कि संगम पर कितनी प्राप्तियां हुई हैं? जितने बाबा के टाइटल भक्ति मार्ग के अंदर हम लोगों ने गए हैं, वो सभी टाइटल्स बाबा कहते हैं आप बच्चों के समान हैं। आप देखो अपने मंदिरों में जाकर के, आपने भरूच का शायद एक मंदिर देखा होगा, नीलकंठेश्वर का, जो अपने सेंटर के बाजू में है। मैंने पहली पहली भट्टी वहां कराई थी, पहली भट्टी मुझे यादगार इसलिए रही, मैं उस समय स्थान नहीं था, मंदिर को ही लिया था किराए पर। मंदिर में ही भट्टी एक तरफ टीचर्स की चल रही थी, एक तरफ भरूच के भाई बहनों की थी। भरूच के भाई बहनों के साथ मैं था और टीचर्स की भट्टी में सरला दीदी थी। तो वो मंदिर जब देखा तो उसमें जो मूर्तियां शिवलिंग की, छोटे 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 शिवलिंग बने, सैकड़ों हैं, उसमें तो हजारों होंगे, और हरेक का टाइटल अलग था। तो जब हम सवेरे उसमें दर्शन करने के लिए जाते थे तो मुझे ये नशा चढ़ता था, ये बाबा कहता है जो मेरे टाइटल है तुम बच्चे इसके मालिक समान है हमारा, तुम सब मास्टर हो। आज बाबा ने हम बच्चों को कितने ऊंचे ऊंचे टाइटल दिए हैं, कितने ऊंचे सम्मान दिए हैं, क्या उनकी स्मृति रहती है? समर्थी का आधार स्मृति है। अगर वही स्मृति रहती है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं विश्व परिवर्तक हूं, मैं मास्टर रचयिता हूं, मैं विजयी रतन हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं विद्यापति हूं, आप इस थोड़ा सा ध्यान दो, जो शिव बाबा के टाइटल हैं, सब शिव बाबा के टाइटल हैं वास्तव में, लेकिन बच्चों को बाबा ने स्मृति दिला करके मास्टर बनाया कि आप मेरे राइट हैंड हो, आप मेरी भुजाएं हो, जो मेरी महिमा है वो आप बच्चों की महिमा है। अब इस स्मृति को हमें रिवाइज करना है। कई लोग हमको कहते हैं कि मेरा योग नहीं लगता है, मैं बैठता हूं बुद्धि भटक जाती है। उसका कारण है कि जो बाबा ने स्मृतियां दिलाई हैं उन स्मृतियों को हम रिवाइज नहीं करते। रिवाइज करो कि बाबा ने मुझे ये कहा है। आज पांच सम्मान मैं आपको ऐसे बताता हूं, अगर ये सम्मान आप चलते फिरते याद करेंगे ना, आप योग अपने आप लगा रहेगा। लगाने की क्या मेहनत करनी? कई बार बाबा कहता रहे बच्चे योग योग कह करके तुमने क्यों भारी कर दिया, इस योग शब्द को उड़ा दो। तो मुझे याद करो, याद करने में क्या मेहनत है? और याद तब आती है जब उसे संबंध हो और जब उससे कुछ प्राप्ति हो। कोई से भी याद क्यों आएगी? अलौकिक में भी किसी की अगर याद किसी को आ रही है बार बार, तो जरूर उससे कुछ प्राप्ति हो रही है, उससे हमारा स्पेशल स्नेह है। तो स्नेह और प्राप्ति के आधार से उसकी याद नेचुरल रहती है। तो बाबा ने अपनी परिचय के साथ साथ अपना संबंध जुड़ा लिया और संबंध में इतनी प्राप्ति करा दी। आज बाबा के साथ चाहे आप पिता के रूप में उसको याद करो, चाहे माता के रूप में याद करो, चाहे शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में, साजन के रूप में, सखा के रूप में, कभी कहता सतगुरु के रूप में, कभी कहता बच्चा बना लो। एक ही ऐसा बाबा है जो सब कुछ बन सकता है, देहधारी कैसे सब बनेगा? और हर गोपी के साथ उसको दिखाया है, वो तो श्री कृष्ण को दिखाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति शरीर वाला सबके साथ कैसे रहेगा? ये निराकार बाबा तो हर एक के साथ रहता है। क्या कहता है? बच्चे अपने इस स्मृति स्वरूप में रहो कि मैं शिव शक्ति हूं, मैं कंबाइंड हूं। अब ये जब समान स्मृति में रहता मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूं, कैसे सा कंबाइंड होता बाबा आपके साथ? होता है, अनुभव किया है, शक्ति है, शिव बाबा है कंबाइंड, कैसे है? जब आप अपने अकाल तख्त पर बैठो ऐसे अनुभव करो जैसे शिव बाबा तो निराकार कहता मुझे कितना स्थान चाहिए, जैसे तुम लाइट हो ऐसे मैं भी लाइट हूं। अब बाबा की वो सब शक्तियां ऐसे इमर्ज करो कि जैसे वो मेरे साथ कंबाइंड है, शिव के साथ मैं शक्ति हूं, और उनकी शिव की जितनी शक्तियां वो मेरे अंदर इमर्ज हो जाएंगी, साथ रहेंगे, संघ का रंग लगेगा। अगर वो पतित पावन है तो मैं मास्टर पतित पावन बन जाऊं। कंबाइंड रहने का एक अच्छा अभ्यास अगर कर ले, इस स्मृति को बार बार रिवाइज करें कि मैं आत्मा शिव शक्ति हूं। शक्ति केवल बहनों को नहीं कहता बाबा, आत्मा शक्ति है। और जब आत्मा शक्ति स्वरूप है तो और शिव बाबा के साथ कंबाइंड है तो उसके समान उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, उसका बोल, उसकी कल्याण की भावनाएं, उसके कर्तव्य सभी मर्ज होने लगते हैं। स्मृति से इतनी समृद्धि आ जाती है कि अगर ये स्मृति रहती है कभी डर नहीं लगता, कहीं शिव शक्ति हूं, कोई कितनी भी आसुरी वृत्ति वाला मेरे सामने आ जाए। आज उनकी देखो देवियों की पूजा होती है शिव शक्ति के रूप में, देवी दुर्गा काली सरस्वती पूजा होती है तो उनके चरणों के नीचे असुर दिखाए हैं। वो अहिंसक कोई तलवार भाला लेकर के तो नहीं खड़ी है, लेकिन बाबा ने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हम सबको दिए हैं कि अगर ये अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पास हैं और ये स्मृति है कि मैं शिव शक्ति हूं तो कोई आसुरी वृत्ति वाला आपके सामने आएगा तो वो झुक जाएगा, वो हार जाएगा, वो सोचेगा अरे ये तो देवी है, ये तो दुर्गा है, इसके सामने मैं ऐसी भावना से कैसे आ गया। उसको महसूस होगा, माफी मांगेगा, चरणों पर आ जाएगा। लेकिन ये स्मृति बहुत पावरफुल चाहिए। जरा भी ये स्मृति आ गई मैं कन्या हूं, मैं कुमारी हूं, मैं बहन हूं या मैं कमजोर हूं तो वार हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि वृत्ति चंचल हो जाएगी सामने वाले की। कई बार बाबा ने कहा है, साकार बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में, साकार मुरलियों में, कि बच्चे ऐसा समय आएगा अंत समय में जो कई प्रकार की बहुत गंदी दृष्टिवृत्ति वाली आसुरी शक्तियों वाली आत्माएं आपके सामने आएंगी। आजकल भी कई ऐसे तांत्रिक, कई ऐसे लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन अगर हम ऊंचे सामान्य में स्थित हैं, उस श्रेष्ठ स्मृति में स्थित हैं तो उनके प्रभाव में हम नहीं आते और उनको अनुभव होता है कि इनके ऊपर मेरा कोई भी अस्त्र शस्त्र चल नहीं सकता। ये बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये बहुत महान आत्माएं हैं, ये पवित्र आत्माएं हैं। आप हम सब का जो रक्षा कवच है वो सदैव याद रखना, वो है हमारे पवित्र विचारों का। सदैव स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं एक बहुत परम पवित्र आत्मा हूं और मैं पवित्र आत्मा इस पवित्र आभा मंडल के बीच में रहती हूं, क्योंकि जितने पॉजिटिव संकल्प हैं, जितने श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प चलते हैं उससे एक बहुत सुंदर ओरा बनता है, आभा मंडल जिसको हम कहते हैं। उस आभा मंडल के बीच मैं एक पवित्र आत्मा हूं। अगर हम सब अमृत वेले से इस समान को लेकर के चलें, कितनी भी गलत दृष्टिवृत्ति वाली आत्मा सामने आएगी, ये मिट्टी की शरीर को देख करके इस जगह पर उसको लाइट दिखाई देने लगेगी। बाबा अपने बच्चों को इतना तैयार करना चाहता है कि ऐसी परिस्थितियां जब आएंगी हमारे बच्चों से साक्षात्कार हो जाए कि ये साधारण नहीं है, ये अलौकिक है, ये अलग है, ये एक लाइट है, इनके अंदर जरा भी इम्प्यूरिटी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर इम्प्यूरिटी का जरा भी अंश भी रह गया, कोई भी दृष्टिवृत्ति में विकारी भावनाएं रह गई, इसलिए कितनी मुरलियां चली हैं बच्चे, व्यर्थ सोचना भी अपवित्रता है, नेगेटिव विचार करना भी अपवित्रता है, इस विचारों में परिवर्तन लाओ। वो तभी आता है जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं। अगर बाबा के साथ आप कंबाइंड रहो तो बाबा के संग के रंग से आत्मा एकदम प्योर स्वच्छ बनती जाएगी। कितनी बार बाबा मिसाल देते हैं कि अगर पारस के साथ कोई लोहा भी आके टकरा जाए, टच हो जाए, तो परिवर्तन हो जाता है, वो भी गोल्ड बन जाता है। हम अगर बाबा पारस है, पारस सदा के लिए वो पवित्र है, कभी भी अपवित्र बना नहीं पूरे कल्प में, ऐसी परम पवित्र आत्मा परमात्मा के साथ थोड़ा समय भी अगर हम रहते हैं, कल बाबा कह रहे थे एक घंटा भी अगर अशरीरी बन जाओ, कल की मुरली में था ना, एक घंटा भी अशरीरी स्थिति आपकी बन जाएगी तो आपके कई जन्मों के विकर्म विनाश हो जाएंगे। कभी कभी अव्यक्त बाबा ने कहा अरे बच्चे 3-4 मिनट आप उस अशरीरी स्टेज में बैठ जाओ तो कई घंटे की नींद और थकावट दूर हो जाएगी। अभी तक तो अनुभव नहीं कर पाए हैं, किया है, करते हैं, योग करते हैं। आप इस स्थान पर आए हैं ना, सिर्फ कमेंट्री वाला योग नहीं, कमेंट्री वाले में बुद्धि बार बार जाती है, क्या कमेंट्री चल रही है उस पर अटेंशन रहता है, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट एकदम डीप साइलेंस में चले जाओ। और शरीरी स्टेज किसको कहते हैं, है शरीर में ही, आत्मा कोई शरीर से निकल के जाएगी क्या? निकल के जाएगी तो पानी बन जाएगा, शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन मर्ज और इमर्ज, ये सब स्मृतियां मर्ज हो जाए और वो स्मृति इमर्ज हो जाए कि मैं बाबा के साथ हूं। अशरीर स्टेज, शरीर में होते हुए शरीर का भान परिवर्तन हो जाए और मैं एक लाइट के शरीर या निराकारी स्वरूप में स्थित हूं। इसका अभ्यास करना, इससे हमारे जो भी संस्कार हैं वो समाप्त होंगे, परिवर्तन होंगे। ये स्मृति इतनी शक्तिशाली है कि मैं एक शरीरी आत्मा, पवित्र आत्मा हूं, उस पवित्र स्वरूप में स्थित होने से समर्थ आ जाएगी कि आत्मा बिल्कुल कंचन प्योर शुद्ध बन जाएगी, मेहनत नहीं लगेगी। जो आज हम सबको युद्ध लगती है ना, बाबा कहते हैं योद्धे थोड़ी हो, जो हमें युद्ध करनी पड़े, अगर युद्ध करते करते शरीर छूट जाएगा तो कहां जाओगे। अभी संगम पर युद्ध का समय समाप्त, इतनी अच्छी स्थिति हम सबकी बने जो बस मैं बाबा कहूं और बाबा के पास पहुंच जाऊं, उनका संग का रंग ऐसा लग जाए जो आत्मा बिल्कुल प्योर शुद्ध निर्मल, कोई भी ऐसा संस्कार नेगेटिव ना रहे। ये है स्मृति की शक्ति, जैसे वो कहते हैं स्मृति से समर्थि आ गई। अगर स्मृति में है कि मैं एक बाबा का बहुत परम पवित्र बच्चा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा हूं, स्मृतियां तो दिलाई बाबा ने, और क्या है ज्ञान, क्या है स्मृति दिलाई। और इस स्मृति में जब हम स्थित रहते हैं, समान में स्थित रहते हैं, तो वो समर्थि आ जाती है जो चरा भी कोई भी कर्म इंद्रियां चंचलता नहीं कर सकती, कंट्रोल आ जाता। कभी ये नहीं कहेंगे चाहता नहीं था, गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया। मैं बहुत इस बात पर अटेंशन देता हूं कि आज मेरे को इतने साल बाबा के घर में हुए, मुरलियां सुन रहे हैं, अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छे संग में रह रहे हैं, फिर भी हम कहें मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे जोश आ जाता है, मेरे से अपशब्द निकल जाते हैं, क्या हमने पुरुषार्थ किया, बाबा का बनकर के हमने क्या सीखा। आप सब इस पर ध्यान देना, बाबा इतना समय से हमें पढ़ा रहा है, बातें किसके सामने नहीं आती, परिस्थितियां किसके सामने नहीं आती, लेकिन अहम भाव जब तक नहीं समाप्त किया, जब तक मैंपन को नहीं गलाया, मैंपन गल जाए, जो मैं है ना उल्टा मैं, देह मान वाला, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं धनवान हूं, मैं सहयोगी हूं, ये मैं जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। और जब तक ये रहेगा तब तक क्रोध समाप्त नहीं होगा। अहम भाव, देह मान वाला मैं, बुद्धिवान वाले का मैं बुद्धिवान हूं, मैं अनुभवी हूं, मैं बहुत पुराना हूं, मैं इतने समय से ज्ञान में हूं, कई चलते हैं लेकिन ज्ञान उनके जीवन में नहीं चलता। कई बहनें सुनाती हैं ज्ञान में चलते हैं लेकिन ज्ञान उनके जीवन में नहीं चल रहा है। हम सबके जीवन में ज्ञान आ जाए, एकदम शीतल, जैसे बाबा के लिए, साकार बाबा के लिए कहते हैं, मैंने दादी जी को प्रैक्टिकल देखा, बड़ी दादी के साथ बैठते थे कभी कभी, ऐसे बैठी होती थी, हम चीदाई से हाथ पकड़ लेते थे। बाबा कहता है ऐसा लगेगा जैसे हड्डी मांस है ही नहीं इनके अंदर, लाइट का शरीर है। ब्रह्मा बाबा के लिए भी यही लोग कहते थे, जैसे फूल जैसा शरीर है, कोई भी प्रकार का जैसे अभिमान है ही नहीं, जरा भी उनको भान ही नहीं रहा ये देह में ये हड्डी मांस भी है। इतनी अभ्यास, इतनी प्रैक्टिस कर ली, शरीर तो यही थे, लेकिन बाबा ने ऐसा लाइट में रहने का अभ्यास किया जो सामने वाली आत्मा को ये शरीर नहीं दिखाई देता था, लाइट का शरीर दिखता था। और कई माताएं कन्याएं दौड़ करके बाबा को ऐसे पकड़ लेती थी और बाबा कहता अरे बच्ची क्या कर रहे हो, उनको ये शरीर दिखाई नहीं देता था। दादी जी की भी ऐसी स्थिति हमने देखी, प्रकाशमय दादी की, बिल्कुल सरल नेचर बना ली, ऐसी मोल्ड हो गई अपने आप को, ऐसा कर लिया एकदम भोली सीधी, कुछ भी नहीं उनको पता, ऐसे इनोसेंट जैसे, जैसे गुलजार दादी अभी है, प्रकाशमय दादी को ऐसी हालत में हमने देखा, बिल्कुल ऐसा अभ्यास कर लिया योग का। हम सभी भी इन कर्म इंद्रियों की जितनी उत्तेजनाएं हैं, उत्तेजनाएं समझ रहे हो ना, आवेग आवेश कोई भी बात नहीं अच्छी लगी, फट से बोल देंगे, फट से जवाब दे देंगे, टकराव कर लेंगे, मनमुटाव कर लेंगे, दूरियां बढ़ा लेंगे। ये ब्राह्मण जीवन के लक्षण नहीं है। उसको स्मृति नहीं रहती है कि भगवान ने मुझे अपना बच्चा बनाया है, अपने समान मुझे बनाना चाहता है, मैं उसके समान बन जाऊं। ये स्मृति तो रहे कि बाबा अपने समान मुझे बनाने के लिए आया है, और मैं उनके समान कहां तक बनाऊं, हर एक को चेक करना चाहिए। तो पांच समान जो मैं आपको बता रहा था, ध्यान देना, आंख खुलते ही स्मृति में लाओ, बाबा मैं आपके मस्तक की मणि इस मस्तक पर विराजमान हूं, मैं मस्तक मणि हूं, देह अलग है मैं अलग हूं। जैसे सांप की मणि होती है ना, मणि रख करके वो डांस करता है, कहते बाहर निकाल के कभी कभी रख देता है, चमक कितनी होती है, लाइट कितनी होती है। ऐसे ही हम सभी इस शरीर के अंदर इस मस्तक में विराजमान एक चमकती हुई मणि है, बहुत प्योर, बहुत वैल्यूबल, जिसकी कीमत केवल भगवान जानता है। दूसरा बाबा कहता है, बच्चे इस सुमान में रहो कि बाबा मैं आपके नैनों का नूर हूं। बाबा कहता है, नूर नहीं तो जहान नहीं। और नूर, ये जो आंखें पलके पलकों के बीच में जो पुतली है उसके अंदर जो बिंदु है उसको नूर कहते हैं। अगर वो नूर में कोई भी ऊपर मैल भी आ जाती है तो कहते इसको मोती आ गए, इसको सफाई करो, रोशनी खत्म हो जाती है। मैं आत्मा बाबा के नैनों का नूर, इस नूर में आत्मा बाबा बैठा हुआ है, तो मैं नैनों का नूर हूं, याद करो और बार बार नैनों में समा जाओ, प्यार में समा जाओ। नहीं, कोई माताएं कहती हैं बड़े प्यार से लौकिक में बच्चे को, ये तो मेरे नैनों में रहता है, ये तो मेरे दिल में रहता है। वो तो नहीं बैठा है दिल में, लेकिन उसकी याद, उसका प्यार हमारे नैनों में, हमारे दिल में रहता है। तो ऐसे ही बाबा को बार बार को, बाबा आप तो मेरे नैनों के नूर हो, मैं आपके नैनों का नूर हूं, मैं आपके दिल तख्त का मालिक, दिल तख्त नसीन हूं। जो सपूत हैं, जो आज्ञाकारी हैं, उस दिल तख्त के मालिक बनकर के रहते हैं। तो ये स्मृति रहे कि मैं बाबा आपके दिल का मालिक, दिल तख्त नसीन बच्चा हूं। चौथा सुमान है, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूं। और पांचवा है, मैं बाबा आपका राइट हैंड हूं। वैसे लेफ्ट भी चाहिए, लेकिन बाबा कहता है हमेशा ये स्मृति में रहे कि मैं आपका राइट हैंड हूं। राइट हैंड का प्रयोग हर श्रेष्ठ कार्य में होता है, पूजा का होगा, खाने पीने का होगा, किसी को देने लेने का होगा। अगर कोई लेफ्ट से देने लगे, भले लेफ्ट हैंड वाले होते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं माना जाता। हम सब बाबा के राइट हैंड है, और मुझे बाबा का नाम रोशन करना है अपने हर कर्म, बोल और संकल्प से, अपनी चलन से। राइट हैंड बन करके हम रहे, जहां जरूरत है मैं हूं पहले, बाबा आप जहां यूज करना चाहो। हम लोगों का अनुभव तो यही है, बाबा आप जैसा यूज करना चाहो, मैं आपका हूं, आप जो कराना चाहो, चाहे झाड़ू लगवाई, चाहे धोबी घाट करवाया, चाहे आज क्लास कराने की ड्यूटी दे दी, मैंने मांगा नहीं कुछ भी, किया सब कुछ, जो मिला कभी नहीं कहा ये मेरे को नहीं आता है, मुझे नहीं करना आता, बाबा आपने दिया, दादियों ने दिया। सिर्फ एक ही पाठ पक्का किया, हाँ जी बड़े हैं, निमित्त हैं, अगर निमित्त को मैंने सम्मान नहीं दिया तो दुआएं कैसे मिलेंगी। इसलिए जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है, मैं हमेशा अपने भाई बहनों को कहता हूं, कैसी भी बहने हैं लेकिन भगवान के आसन पर बैठी हैं, इनको आप रिगार्ड दो, सम्मान दो, सब कुछ प्राप्ति आपको हो जाएगी। उस बहन का महत्व तो नहीं है, लेकिन उस आसन का महत्व तो है। विक्रमादित्य के आसन का महत्व तो था। जो व्यक्ति बैठ जाए, सुना होगा कहानी, एक भेड़ चराने वाला ग्वाला, बकरी भेड़ चराने वाले होते हैं ना, वो जाता था तो एक टीले पर जब पहुंचता था तो उस स्थान पर बैठ जाता था जाकर, भेड़ बकरियां चर रही हैं चारों तरफ से, टीले पर जाते ही बड़ा विद्वान की तरह भाषण करने लगता था, अच्छी अच्छी बातें सुनाता था, लोग आते थे उसे निर्णय लेने के लिए, बातें पूछने के लिए, तो उस स्थान पर जाते ही उसको कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लोगों ने कहा ये तो गांव का बोला, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसके पास कोई समझ नहीं है, लेकिन ये स्थान की क्या विशेषता है जो इस स्थान पर आते ही इसकी बुद्धि बहुत विशाल हो जाती है। लोगों ने एक दिन उस टीले को खोद दिया, चेक किया तो उसके नीचे एक विक्रमादित्य का आसन था, छिपा हुआ आसन था, और उस विक्रमादित्य के आसन पर देखा कि यहां पर जो बैठता है वो बुद्धि कितनी विशाल उसकी हो जाती है। बाबा ने जिन बहनों को बिठाया है, जिनको निमित्त बनाया है, वो किसके आसन पर है? एक ही आत्मा है जिसके जन्मों की कहानी बाबा ने सुनाई है, जो श्री कृष्ण की नंबर वन आत्मा है, वो पाठ बजाते जब द्वापर में आती है तो विक्रमादित्य के रूप में राज्य करती है। वहां विक्रमाजीत है श्री नारायण, और फिर यहां विक्रमादित्य है जिसका विक्रम संवत शुरू होता है, और कलयुग में वही आत्मा ब्रह्मा की आत्मा है। अब उस आसन पर जो ब्रह्मा बाबा ने जहां से मुरली चलाई, जहां से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का नई सृष्टि की स्थापना का पाठ चला, उस आसन पर उसने अपनी बहनों को बच्चियों को बिठाया। भले भोली हैं, सीधी हैं, कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आसन किसका है? अगर ये भाव से आप क्लास में जाएंगे ना तो आपको प्राप्ति होगी, आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उस आसन से जो बोलेंगे हो जाएगा। मेरी तो ये भावना रहती है, इसलिए हम सब कभी भी मैंपन के अभिमान में ना आए, बहुत नम्रचित, बहुत निर्माणचित बन करके निमित्तपन की स्मृति, अगर हमको कोई सेवा मिली है बाबा के यज्ञ में, बाबा के कार्य में कुछ भी सफल करने का चांस मिला है, भाग्य मिला है, तो उसने भगवान ने मुझे निमित्त बना दिया, बहुत नम्रता के साथ, निर्माणता के साथ, करावनहार बाबा है। क्या स्मृति रहती? करावनहार वो है, वो करा रहा है, हम सबको नचा रहा है, जो कराना चाहे करा ले, जैसे कहेगा वैसे हम करेंगे, बस और कुछ नहीं। तो मुझे तो ये भान रहता है कि बैक में बाबा है, वो बैक बोन है, और सीधे ही चाहे जो कार्य करो बैठ जाओ, ऐसे बाबा को ध्यान पर लाओ, स्मृति में लाओ कि बाबा आप तो करण करावनहार हो, मैं आपका बच्चा बहुत सरल सीधा हूं, मुझे कुछ नहीं आता, आप आकर के करो। सब काम अच्छे से अच्छे होते हैं, कोई काम बिगड़ता ही नहीं है, और कहने के बाद अगर कोई कहता आपने बहुत अच्छा किया, तो अंदर ये भी नहीं आता मैंने किया, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं था। इतनी आत्मा को सरल, नेचर, निर्माणचित, नम्रचित बना करके अगर हम रहते हैं तो दिखाई देता है कि इसको सचमुच भगवान मिला है, कहता नहीं है, इसके जीवन से पता चलता है, इसको भगवान पढ़ाते हैं। स्मृति में रहता है कि बाबा मेरा साथी है, वो मेरा बाप टीचर सतगुरु है, वो मुझे गाइड कर रहा है, वो मेरे साथ साथ है। लोगों को तो पता नहीं चलता है, इतनी सारी व्यवस्थाएं यज्ञ की देखते हैं, देखकर कहते हैं पता नहीं कैसे चलता है, इनके ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, इतनी सारी व्यवस्थाएं सब चलती हैं। बाबा उनको दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन वो बार बार कहते हैं भाई कैसे चलता है, कैसे चलता है। हम कहते हैं जो चलाने वाला है, कराने वाला है, वो दिखाई नहीं देता है। उसको अगर पहचान लिया तो सरेंडर हो जाओगे आप। हम सब ने उसको पहचाना है, उसकी स्मृति में हम रहते हैं, और उस स्मृति में रहने के कारण हमारे अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, विकारों पर जीत पाने की शक्ति है। कोई भी विकार, कोई भी इंद्रिय धोखा नहीं दे सकती, कभी भी हम सब पर वश नहीं हो सकते। तो ऐसी स्मृति स्वरूप बनकर के रहना, अगर ये भी स्मृति रहती है कि बाबा मैं कल्याण के निमित्त आपका बच्चा, मास्टर, विश्व कल्याणकारी हूं, अकल्याण का कर्तव्य मैं नहीं कर सकता, मैं रहम दिल आपके समान, मास्टर रहम दिल हूं, जैसे आप दयालु और कृपालु हो ऐसे मैं मास्टर दयालु कृपालु हूं। तो ये भिन्न भिन्न स्मृतियां बार बार रिवाइज करो, अमृत वेले से इन्हीं स्मृतियों में रमण करो, योग भी सहज लग जाएगा, ऊंचा समान स्मृति में रहेगा, शक्तिशाली स्थिति रहेगी, और बातें आएंगी, ऐसे पार हो जाएंगी। बातों की परवाह थोड़ी करनी, किसके आगे नहीं आएंगी, जो हिसाब किताब है हमसे ज्यादा तो गलत काम शायद दुनिया में किसी ने किए ही नहीं होंगे। 63 जन्म से हम पहले नंबर से बॉडी कॉन्शियस में आए हैं, द्वापर शुरू हुआ और सबसे पहले देहमान घुस गया मेरे अंदर, और देहमान में आकर के भले राजा ही रही तो प्रजा पर कितना सितम किए होंगे, कितना सताया होगा लोगों को, युद्ध किए होंगे, लड़ाइयां की होंगी, एक दूसरे के ऊपर कब्जा किया होगा, छीना होगा एक दूसरे का राज्य। अब संगम पर सब मिले आकर के फिर थोड़ा बहुत तो टिक टिक करेंगे ही, इसलिए कभी नहीं सोचो ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, अरे भाई हमने भी कुछ किया होगा तब तो कर रहा है। अपनी स्थिति को डगमग होने नहीं, इतना बाबा ने सुंदर ज्ञान दे दिया, ये ड्रामा का जो इतना अच्छा पाठ पढ़ा दिया, अगर इसको कोई स्मृति में लाता है कि हर आत्मा का अपना पार्ट है, और जो कुछ हम सबने एक दूसरे के साथ कर्म बंधनों के कारण, देहमान के कारण हिसाब किताब बनाए हैं, इस संगम पर हमें सब चुकतु करना, कर्जे चढ़े थे वो कर्जे उतरे और मैं आत्मा लाइट हो जाऊं, हल्की हो जाऊं। इसलिए सब बाबा के बच्चों को कभी भी क्वेश्चन तो करना नहीं है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारे सेंटर पर ऐसे हो रहा है, उसके पास ऐसे हो रहा है, ये ज्ञान तो बड़ा सुनाते हैं, इनके जीवन में तो दिखाई नहीं देता। कई ब्राह्मण आत्माएं अपने को बहुत उलझा लेती इन बातों में, अगर ज्ञानी तो आत्मा उसको स्मृति में रहता है कि इन आत्माओं ने बहुत कुछ पिछले जन्मों में किया है, अभी संगम समय है, ये सब चुकतू करेंगी और चुकतू करके वापस घर जाएंगी, रहती स्मृति अभी जाने का समय है, वापस चलना है, जाना है। अगर इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहेंगे ना तो समर्थी आ जाएगी जो हर बात में उपराम हो जाएगी। उपराम रहने की समर्थी उसके पास ही रहती है जिसको ये स्मृति में रहता है कि अब तो मुझे घर चलना है, वापस चलना है, क्या हिसाब किताब बनाना, क्या मुझे चाहिए, कौन मकान दुकान घर हम साथ लेकर के जाने वाले, न साथ लेके आए थे न साथ लेके जाएंगे। लेकिन अगर हमने कुछ पुण्य किया है, कुछ अच्छा श्रेष्ठ कर्म किया है, दुआएं ली हैं, तो वो तो मेरे सात संस्कारों में भर गई हैं, वो तो साथ जाएंगी और उसी के आधार से हमें सत्युग में श्रेष्ठ पद मिलेगा। तो संगम ऊपर अब सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो, संतुष्ट रहो संतुष्ट करो, बाबा ने जो दिया है वो हमारे जीवन में लोग अनुभव करें, हमारी दृष्टि से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से, हमारे चलने से लोगों को दिखाई दे कि सचमुच इनको कुछ अलौकिक चीज मिली है, इनके साथ कोई अलग शक्ति है। ये तो हम जितनी स्मृति में रहेंगे उतना हमारे स्वरूप में वो बातें आती जाएंगी। तो ज्ञान का स्मृति स्वरूप बनो, योग का स्मृति स्वरूप बनो, फिर देव पद देवता स्वरूप का स्मृति स्वरूप बनो, तो स्मृतियां समर्थी ले आएंगी और जितनी कमियां कमजोरियां संस्कार अवगुण है वो सब समाप्त हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, समय हो रहा है, चलो 3 मिनट हम सब बाबा की याद में बैठेंगे।